بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم خدا کی صفت سمیع و علیم کے اوپر بات کریں گے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا اور علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. سما ہمارے سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، لیکن سمیع کے اندر دوام کا وس پایا جاتا ہے کہ ہر لمحے سن رہا ہے، کوئی چیز بھی اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے. اور علیم کے معنی ہیں جاننے والا. اگر یہ دونوں اکٹھے نہ ہوں تو مثلا ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں سمجھتے کیونکہ ان سے واقف نہیں ہوتے. مثلا میں اپنے کسی بچے کے بارے میں بات کروں جس کو آپ نہیں جانتے تو میری باتیں آپ کے لیے بے معنی ہوں گی کیونکہ آپ علیم نہیں ہیں، سن تو رہے ہیں. تو باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے علیم ہونا ضروری ہے. کوئی بات بھی اگر آپ سنیں اور اس سے واقف نہ ہوں، اس کے پس منظر سے اس کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے، کون سننے والا تھا، کون کہنے والا تھا، تو آپ اس کے معنی سمجھ نہیں سکیں گے. بس یہ تو ہوگا کہ آپ کو جملوں کے معنی سمجھ آ رہے ہیں لیکن بات نہیں سمجھ سکیں گے. تو بات سمجھنے کے لیے علیم ہونا ضروری ہے کہ آپ ان باتوں سے واقف ہوں. اگر آپ کو زبان نہیں آتی تب مثلا ہم کسی چینی کو بولتے ہوئے تو سن لیں گے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، تو سن تو رہے ہوتے ہیں ہم. تو سننا جو ہے وہ لازم نہیں کرتا کہ آپ بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. اس وجہ سے دو باتیں اکٹھی کر دی گئی. تو دو صفات مل کر خدا کی صفت سماعت کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سننے والی ذات ہے جو ہر بات کو سمجھ بھی رہتا ہے. کوئی چیز اس کی سمجھ سے بالا تر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی سمجھ سے باہر نہیں ہے. وہ سنتا ہے تو پورے معنی کے ساتھ سنتا ہے، پوری بات کو سمجھتا ہے، اس کا کوئی پہلو بھی اس سے فراموش نہیں رہتا، وہ ایک ایک زاویے سے اس کے واقف ہوتا. جیسا میں نے رحمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کسی نشست میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہماری نفسیات میں کیا ہے، ہمارے جذبات کیا ہیں، ہمیں کوئی خوف ہے اس وقت یا ہم کسی جذبات کے تحت بالکل بے قابو ہو چکے ہوئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ میری جب دعا سنتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، میری جب عبادت کو سنتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ پورے معنی سے واقف ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی نیت ریاکاری کی ہو گئی، اس وقت اس کی نیت میرے رضا طلبی کی ہو گئی، اس وقت اس کی نیت اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ہو گئی، اس وقت اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، یہ تو نماز اپنے باپ کی وجہ سے پڑھنے آ گیا تھا، میری وجہ سے تو نہیں آیا تھا. یہ سارے باتیں وہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے. تو اس لیے سمیع و علیم دونوں مل کر خدا کی اس صفت کا بیان کرتے ہیں کہ خدا شاندار سننے والا ہے، بے عیب سننے والا ہے. کوئی بات، ایک لفظ جو ہم چنتے ہیں، ایک آواز جو نکالتے ہیں، ایک کراہ جو نکالتے ہیں، ایک آہ جو نکالتے ہیں، ایک کہکہ جو نکالتے ہیں، اس کے پورے پورے پہلوؤں سے وہ واقف ہوتا ہے کہ یہ کہکہ کیوں نکلا ہے، یہ آنسو کیوں بہے ہیں، یہ چیخ کیوں آئی ہے، یہ سارا کچھ وہ سنتا اور جانتا ہے. یہ سمیع و علیم ہے. سمیع و علیم جو ہے یہ اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے اور ایک تسلی بھی ہے. جو لوگ نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کے لیے دھمکی ہے اس کے اندر کہ میں تمہاری باتیں تو سن رہا ہوں لیکن دل کے حالات بھی جانتا ہوں. جو مجرم ہیں ان کے لیے بھی دھمکی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، مثلاً ایک بڑا لیڈر پیدا ہوتا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، قوم کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، ایک دوسرا لیڈر اس کو غلط کہنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں سمیع علیم ہوں، تم جو باتیں کہہ رہے ہو اس کو بھی سن رہا ہوں اور جس معنی میں کہہ رہے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، تو بچ کے رہو، میرے پکڑے جاؤ گے. ہم فقیروں کے لیے اس میں تسلی بھی ہے. مثلاً ہمارے ہاں ہم نیکی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے سارے کے سارے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عیدی دینے لگتے ہیں تو وہ باپ کے سامنے دینا اس کو، تاکہ اس کے کریڈٹ میں آئے کہ میں نے تمہیں عیدی دی ہے تمہارے بچے کو. تو یہ کریڈٹ لینے کا جو جذبہ ہے ان لوگوں کے لیے خدا سمیع و علیم ہے. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے ساتھ کیا کرو، خدا کو دکھا کر کام کرو کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہا ہوں. تو اب میرے لیے تسلی ہے اس پہلو سے بھی کہ میرے کام ضائع نہیں جائیں گے، मैंने जो छुप कर किया है। अब मैंने अपने भाई के बेटे को कि वो गरीब है मसलन, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैंने उसकी मदद के लिए ईदी दी है उसको, कहने को मैं ईदी दे रहा हूँ, हकीकत में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हूँ। तो अब अल्लाह ताला जानते हैं मेरी ये नेकी ज़ाया नहीं जाएगी, मैं किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा ही कर रहा हूँ, तब छुप छुपा के कर रहा हूँ, मेरा मुँह छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता, रात के अंधेरे में जाकर मैं मदद कराया हूँ, तो कौन देख रहा है, कौन जानता है। तो रियाकारी का ये जो पहलू है खुदा के साथ, मेरी तसल्ली होती है कि मेरी नेकी ज़ाया नहीं जाएगी, खुदा देख रहा है, खुदा जानता है, खुदा सुनता है। तो फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अब जो आयात मैं पेश कर रहा हूँ उनको देखिए, कि ऐ ईमान वालों खुदा और खुदा के रसूल के सामने आगे बढ़ने की कोशिश ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है, इसलिए अल्लाह से डरते रहो। अब ये धमकी है इसके अंदर कि ऐसे काम ना करो जो खुदा के आगे बढ़ने की कोशिश हो, खुदा के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश हो, और क्योंकि अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह ताला सारी बातों को सुनता और जानता है। अब देखिए इसमें कि अगर किसी वक्त मिसाल के तौर पर किसी बुज़ुर्ग के आगे हमसे बाज़ूकात ऊंची बात हो जाती है, तो लेकिन हमारी नीयत नहीं होती कि हम कोई गुस्ताखी नहीं करना चाह रहे होते, बस किसी वजह से बात ऊंची हो गई, तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अल्लाह के रसूल के सामने किसी सहाबी की इस तरह से बात ज़ुबान से निकल जाए, ज़रा ऊंची आवाज़ में, जो बज़ाहिर देखने में बेअदबी सी लग रही हो, लेकिन उनके अंदर बेअदबी का कोई जज्बा नहीं था, वो बिल्कुल उसी आजजी के साथ बात कर रहे थे, लेकिन बस आवाज़ बुलंद हो गई, तो क्या अल्लाह ताला सजा दे देंगे? नहीं, वो जानते हैं कि ये आदमी अंदर से ठीक है, बस आवाज़ ऊंची हो गई थोड़ी सी। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला समी अलीम है, वो जानता है कि कहाँ ख़ता होती है, कहाँ पर आदमी जानते बूझते करता है। तो अल्लाह से अगर डरते रहोगे तो जानते बूझते नहीं करोगे, जानते बूझते नहीं करोगे तो इंशाल्लाह सज़ा भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जानते बूझते करोगे, जैसा पिछली किसी नशिस्त में हमने कहा था कि ख़ता और दिल के इरादे से, तो दिल के इरादे से अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तो अल्लाह ताला से डरो क्योंकि अल्लाह ताला समी अलीम है। तो खुदा का तकवा हर वक्त हमें इख्तियार करना है, कमरे में छुप कर, अंधेरे में, किसी दरवाज़े बंद करते चले जाइए, सात दरवाज़े बंद कर लीजिए, किसी गोशे में अंधेरे में बैठकर काम करेंगे तो अल्लाह ताला देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। इसलिए हर जगह पे तकवा इख्तियार करना ये समी अलीम होने का तकाजा पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जानता है तो पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो अब दोनों, जो धमकी और जो बशारत है हमारे लिए, तसल्ली है नेक लोगों के लिए और बुरे लोगों के लिए इसमें धमकी है, तो उसकी वजह समी अलीम होना है। तो फरमाया कि तकवा इख्तियार करो क्योंकि मारे जाओगे अगर तुमने तकवा इख्तियार ना किया। फमन बदल अबादा मा सामिया फ़ैन्ना मा इस्मुहु अल्लज़ीना युबद्दिलूनहु। अब ये वसीयत का कानून चल रहा था, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने वसीयत सुनने के बाद उसमें तब्दीली कर दी और तब्दीली ज़ालिमाना की, एक तब्दीली जायज़ है जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कायदे कानून के मुताबिक, कि अदल के ख़िलाफ़ देखो तो उसमें तब्दीली कर सकते हो, लेकिन वो सारे मशवरा करके अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई। तो अब जब ये तब्दीली कर दी जाएगी गुनाह के लिए खातिर, अपना फ़ायदा करने के लिए या किसी पसंदीदा आदमी को फ़ायदा देने के लिए, तो फरमाया कि उसका गुनाह उनके ऊपर होगा जो तब्दील करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब अगर उसने उस पैगाम के मुताबिक जो अल्लाह ने कहा है कि इस्लाह के लिए अगर तुम तब्दीली करो वसीयत में तो जायज़ है, अदल के लिए करो तो जायज़ है, तो अब अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तो जिसने गुनाह की खातिर किया, जिसको कुरान ने बयान किया गैर मुतजानिफिन लेस, कि गुनाह के इरादे से अगर हम कोई काम करेंगे वसीयत के खराबी करेंगे तो अल्लाह ताला सुनने वाला है जानने वाला है, अगर अदल के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तो जो अदल के मुताबिक करेंगे उनको गुनाह नहीं होगा, जो अपने फ़ायदे के लिए और गुनाह के लिए करेंगे उनको सजा मिलेगी। उसके बाद एक और बात अल्लाह ताला ने कही, ये सूरह अल-अनफाल के अंदर है, इसमें ये फरमाया कि मैं जब लोगों पर अपनी नेमत कर रहा होता हूँ तो अपने कायदे के मुताबिक कर रहा होता हूँ, और ये नेमत मैं जारी रखता हूँ, दुनिया के कायदा बता रहे हैं अल्लाह ताला, आखरत का नहीं है। तो दुनिया में कुछ लोगों को अल्लाह ताला माल दौलत इक्तदार, कौमी एतबार से देखें तो गलबा अल्लाह ताला देते हैं, तो फरमाया कि मैं अपने कुछ असूलों पर देना शुरू कर देता हूँ, उस वक्त तक देता रहता हूँ जब तक वो असूलों के मुताबिक चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं तो मैं भी तब्दील कर देता हूँ। तो मसलन देखिए कि एक मुसलमान अरूज पाया नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1000 साल तक अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पहलुओं से उनको गलबा दिए रखा, तो उसमें ख़राबी आती चली गई, यहाँ तक कि इतनी ख़राबी आ गई कि अल्लाह ताला ने छीन ली। तो अब जो अल्लाह का कानून था कि मुसलमानों को गलबा दिए रखना है, उसके पीछे जो कार फरमा कवानीन थे उनके मुताबिक गलबा मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही हम पीछे हटे अल्लाह ताला भी पीछे हट गए। ऐसे ही यूरोप के साथ हुआ, ऐसे ही अमेरिका के साथ है, ऐसे ही अब चाइना के साथ हो रहा है। तो ये खुदा का वो कानून अफराद में भी और कौमों में भी, कि अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर एक आदमी को अल्लाह ताला ने दौलत दी इसलिए कि वो मुल्क कौम के लिए फ़ायदेमंद बने। उसने शुरू में तो इसको कायम रखा लेकिन बाद में माल को सेंतने लग गया, हो सकता है अल्लाह ताला छीन ले। ठीक है, तो ये अब अल्लाह ताला की तरफ से कायदा है कि मैं देता तो हूँ अपने किसी कायदे की वजह से, वो कायदे बयान नहीं किए गए। तो किसी को समाज की खिदमत के लिए, किसी को गरीबों की मदद के लिए, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक उसके अंदर ये वस्फ था कि वो सखी बन सकता है, तो अल्लाह ताला ने माल दे दिया उसको कि गरीबों की मदद करेगा, लेकिन उसने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया। तो हो सकता है अल्लाह ताला छीन ले। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह के पेश नज़र क्या मकासद होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि जब तक वो अपने आप को तब्दील ना करें मैं भी अपना काम जारी रखता हूँ। ये दुनिया का कायदा अल्लाह ताला बता रहे हैं। और जारी रखने का असूल क्या है? समी वाली, कि वो देखते और सुनते रहते हैं कि क्या हरकतें हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं, क्या कारनामे हो रहे हैं, किन किन अमूर में चीज़ें लग रही हैं। और एक अल्लाह का कायदा और भी है देने में, जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बयान किया है कि जो दुनिया चाहने में लग जाते हैं उनको दुनिया में दिया जाता है, बस उनका जो आखिरत वाला हिस्सा वो भी दुनिया में दे दिया जाता है। तो उस कायदे की वजह से बाद लोगों का रिस्क जारी रहता है, बस कौमों को भी अल्लाह ताला हो सकता है 100-150 साल मजीद दे दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो कुछ देना था देना है। तो इस तरह से अल्लाह ताला समी अलीम होने के कायदे के मुताबिक पूरी उस अपने कानून को जारी रखते हैं, और कोई फैसला गलत नहीं होता। ज़ाहरी तौर पर सिर्फ बात नहीं होती, वो जानते होते हैं, वो हर चीज़ को सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो अपने पक्के सच्चे इल्म की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इसी तरह एक और बात सूरह तौबा में बयान हुई है, इसमें यह बताया गया है कि वो लोग जो बद्दू थे मदीना के अतराफ में रहते थे, उनके ऊपर जब कोई ज़कात वगैरह या जंग के लिए मुतालबा सामने आता तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके ऊपर कोई ताबान डाल दिया गया हो, तो वो फिर दुआएं करते हैं या इंतज़ार करते हैं कि नौज़बिल्लाह मुसलमानों को अल्लाह ताला उठा ले मदीना के लोगों को, ताकि ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाए और ये हो जाए। तो फरमाया कि ये इंतज़ार करते हैं तुम्हारे ऊपर बुरे दिनों की, कि तुम्हारे ऊपर कोई नहुसक का चक्कर चल जाए नौज़बिल्लाह। तो फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चलेगा भी तो कौन चलाएगा? अल्लाह चलाएगा ना। तो अब मदीना में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वहाँ बेहतरीन सहाबा मौजूद हैं, उनके ऊपर बुरे हालात आएंगे क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला समी अलीम है, वो जानता है कि क्या हो रहा है। बद्दू क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, और मदीना में क्या उनके ऊपर तावान क्यों डाला जा रहा है? क्या वो नौज़बिल्लाह नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए कर रहे थे? हरगिज़ ऐसा नहीं था। तो जब अदल इंसाफ के मुताबिक काम हो रहे होते हैं तो अल्लाह ताला भी बुरे दिन नहीं दिखाते। कौमी सतह की बात कर रहा हूँ, अफराद में ये ज़रूरी नहीं है। अफराद में ये हो सकता है कि आदमी नेकी कर रहा हो और अल्लाह ताला उसके ऊपर सख्त आजमाइश डाल दें, क्योंकि अफराद के लिए ये कायदा नहीं है कि उनको नेकी करने पर दुनिया में अजर मिलता है। ये कौमों के लिए अल्लाह ताला का कानून है। ये 2-3 बातें हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि गलतियों की सज़ा दुनिया में मिल जाती है, कुछ की मिलती है कुछ की नहीं मिलती, गलतियों की सज़ा। मसलन मैंने दुकान गलत जगह खोल ली, ग्राहक नहीं आएंगे। मैंने सौदा गलत डाल लिया, ग्राहक नहीं आएंगे। मेरा रवैया बड़ा दुरुस्त है, ग्राहकों को देखते ही मैं गुस्से में आ जाता हूँ, ग्राहक नहीं आएंगे। ये गलतियाँ हैं, इनकी सज़ा दुनिया में मिल जाती है बिलअमूम, सब की नहीं मिलती। बहुत सारी गलतियाँ वो अल्लाह ताला की रौफ़ की जो सिफत है उसकी वजह से माफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो गुनाह हैं उनकी सज़ा आखरत में मिलनी है, वो दुनिया में नहीं मिलनी। सवाए इसके कि आदमी तौबा कर ले और अल्लाह ताला दुनिया ही में उसको कोई कफ़ारा बनाना चाहें तो फिर उसको सज़ा दुनिया में दे देते हैं, या उनके ऊपर कोई सख्ती आ जाएगी तो कफ़ारा बन जाएगी। लेकिन असल में तौबा से माफ़ भी हो जाएगी। लेकिन अगर तौबा नहीं की, गुनाह लेकर क़यामत वाले दिन हाज़र हो गया है, तो उन गुनाहों की सज़ा आखरत में मिलनी है, गुनाहों की सज़ा असलन दुनिया में नहीं मिलती। ये याद रखना चाहिए। यह नहीं ख्याल होना चाहिए कि किसी के ऊपर मुश्किलें आ रही हैं तो पता नहीं मैंने अल्लाह का क्या कर दिया है, शायद मुझसे कोई गुनाह हो गया है। नहीं, याद रखिए कि गुनाहों की सज़ा आखरत में मिल रही है। हाँ, ये हो सकता है कि अल्लाह ने झंझोड़ने के लिए आपके साथ किया हो, या आपको बेदार करने के लिए किया हो, या आपके गुनाह का किसी का कफ़ारा बनाने के लिए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि दुनिया में जो मुश्किलें आ रही हैं वो गुनाहों की वजह से आ रही हैं। ये याद रखिए कि उनकी सज़ा असल में आखरत में मिल रही है। माफ़ी नहीं मांगेंगे, तौबा नहीं करेंगे, इन तकलीफ़ों को कफ़ारा नहीं समझेंगे तो क़यामत वाले दिन पकड़े जा सकते हैं। तो जो दुनिया में मुसीबतें आती हैं वो कौमों के लिए अलबत्ता कानून दूसरा है, वो यह है कि अगर कौम कोई अपने अंदर अदल इंसाफ कायम कर लेती है तो दुनिया में तरक्की पाएगी, अदल इंसाफ कायम नहीं करती तो जवाल का शिकार हो जाएगी और दूसरी कौमों के मातहत हो जाएगी। ये कौमों के लिए अल्लाह का लाजमी कानून है। जितनी कौमों ने अपने अंदर अदल इंसाफ कायम किया है और अपने अंदर से करप्शन ख़त्म की है, उनको देख लीजिए, अल्लाह ताला किसी न किसी दर्जे में तरक्की दे देते हैं, गलबा दे देते हैं। वो दूसरी कौमों की गुलामी से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है और बाज़ुकात वो पूरी कौमों के ऊपर सुपर ताकत के तौर पर ज़ाहिर हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला का ज़ाबता है जो समीउ अलीम होने के ज़ाबते में। तो समीउ अलीम खुदा की वो सिफत है जो हर वक्त हमारी निगरानी गोया हो रही है। अल्लाह ताला हमारे एक एक लफ्ज़ को सुन रहे हैं और उसकी पूरी हकीकतों को जानते हुए सुन रहे होते हैं, जानते होते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये बात क्यों कही गई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिक है, इसके पीछे नीयत क्या है, इससे हासिल करना क्या क्या पेश नज़र है, ये तकलीफ़ देने के लिए हुई है, मेहरबानी करने के लिए हुई है, बुरे मकासद के लिए हुई है, अच्छे मकासद के लिए। समीउ अलीम का ये मानी है और इससे नेक लोगों के लिए, शरीफ लोगों के लिए इसमें तसल्ली है कि उनकी नेकियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, अल्लाह ताला देख और सुन रहे हैं। और बुरे लोगों के लिए इसमें धमकी है कि उनकी कोई चीज़ खुदा से पोशीदा नहीं है, कल क़यामत वाले दिन सामने आ जाएगी। समीउ अलीम पर इतनी ही बात पेश नज़र थी। वक्त भी हुआ चाहता है, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।